नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी। सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं, सुनो दिल से। भारत में क्रिकेट एक जुनून है तो भारतीय क्रिकेट के लिए आईपीएल एक धर्म, जिसे निभाए बिना बात बनती नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। वजह भी साफ है कि आईपीएल से जिस तरह की कमाई होती है वो किसी सीरीज से संभव नहीं। अच्छी बात यह कि वो कमाई किसी खास वर्ग तक सिमटी नहीं है। प्लेयर्स हों, बोर्ड हों, अंपायर या सपोर्ट स्टाफ हों, फ्रेंचाइज हों या ब्रॉडकास्टर हों, हर किसी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ न कुछ जरूर है। रबर की तरह खींचते खींचते जब आईपीएल इस महीने के शुरू में थक कर रुक गया तो कवायद शुरू हुई कि बाकी बचे मैच कब और कहाँ होंगे। लगातार मुश्किल होते हालात के बावजूद कोशिशें चलती रहीं और यदि हालात में फिर कोई करवट नहीं बदली तो बाकी बचे 31 मैच सितंबर में कराए जाएंगे। क्रिकेट जैसे खेल का इंटरनेशनल कैलेंडर इतना व्यस्त होता है कि उसमें बदलाव आम तौर पर संभव नहीं होता। बहरहाल यूएई में सीजन 14 के बाकी मैचों का आयोजन सितंबर अक्टूबर में पूरा होना तकरीबन तय पाया गया है। अगर इतने मुश्किल हालात में भी ऐसा हो पाया तो ये सिर्फ आईपीएल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ही जीत होगी। हालांकि इसमें अब भी कई लेकिन किंतु परंतु शामिल हैं। भारत को इसी साल T20 वर्ल्ड कप की भी मेजबानी करनी है, लेकिन भारत में इसका आयोजन तकरीबन नामुमकिन है। ऐसे में इसे भी यूएई में कराए जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से शुरू होगा और उससे पहले कम से कम एक पखवाड़े तक इंटरनेशनल मैच नहीं होंगे, यानी आईपीएल के 31 मैच सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के शुरू होते ही खत्म हो जाने चाहिए। इंग्लैंड के साथ पांचवा टेस्ट 14 सितंबर को खत्म होगा और उसके अगले ही दिन टीम अगर यूएई के लिए निकलती भी है तो भी 17-18 सितंबर से पहले लीग के बाकी मैचेस शुरू नहीं हो सकते। हालांकि इसके बाद भी डबल हेडर के जरिए इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। चूंकि ज्यादातर प्लेयर्स इंग्लैंड में बायो बबल में होंगे, इसलिए वहां से सीधे यूएई पहुंचकर खेल सकेंगे। दुबई में तो इस बात की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन संभवतः अबू धाबी में कम से कम एक सप्ताह का आइसोलेशन झेलना पड़ सकता है। फिर कैरेबियाई प्रीमियर लीग भी 19 सितंबर को समाप्त होगी। वेस्टइंडीज की तकरीबन पूरी टीम ही आईपीएल में शामिल है। ऐसे में या तो सीपीएल के शेड्यूल को हिलाना होगा या फिर उनके बिना ही शुरुआत कर देनी होगी। इंग्लैंड बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उनके प्लेयर्स की प्रायोरिटी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, न कि आईपीएल। एशले जाइल्स ने यह भी कहा है कि भारतीय बोर्ड से इस तरह का कोई अनुरोध अब तक नहीं मिला और भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज के शेड्यूल में परिवर्तन भी संभव नहीं है। सितंबर में साउथ अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली T20 सीरीज को संभवतः रद्द करना पड़ेगा और नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचेस की सीरीज को भी आगे ले जाना होगा। उम्मीद है कि कल इस सिलसिले में होने वाली BCCI की जनरल बॉडी की इमरजेंसी मीटिंग में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस बैठक के तुरंत बाद ICC की बैठक सोमवार को होगी और उसमें संभवतः T20 वर्ल्ड कप वेन्यू शिफ्टिंग की भारतीय योजना पर मोहर लग जाएगी। आईपीएल की दावेदारी की मंशा कुछ और देशों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दिखाई थी, लेकिन अब वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। यूएई ने पिछले साल भी आईपीएल का आयोजन किया था और फिलहाल पाकिस्तान प्रीमियर लीग के बाकी बचे मैच भी वहां जून के पहले सप्ताह में होंगे। हालांकि समस्या मैदानों को लेकर भी हो सकती है। आईपीएल के 31 मैच वहां खेले जाएंगे और वर्ल्ड कप के कुछ क्वालिफिकेशन मैच भी होंगे। कुल मिलाकर 3 मैदानों पर 75 मैचों का अनुमान है। जाहिर है इतनी संख्या में मैच होने से पिच पर प्रतिकूल असर होगा। ऐसे में यह भी हो सकता है कि इस बार ओमान को भी शामिल कर लिया जाए, बशर्ते बॉर्डर सहित आइसोलेशन से जुड़े मुद्दों पर सहमति बन सके। शायद दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए इंटरनेशनल कैलेंडर हिलाकर आईपीएल जैसी लीग के लिए समय निकाल पाना असंभव था, लेकिन बीसीसीआई के लिए ये असंभव नहीं लेकिन आसान भी कतई नहीं होगा। अपने पिछले पॉडकास्ट में हमने रमेश पोवार के भारतीय महिला टीम का नया कोच चुने जाने की खबर दी थी। नया ये है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने WV रमन को नहीं चुनने पर नाखुशी जाहिर की है। गांगुली का मानना है कि रमन ने टीम को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, ऐसे में उन्हें हटाया जाना ठीक नहीं लगता। जैसा कि आप जानते हैं, मदन लाल के नेतृत्व में क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने इस पद के लिए रमेश पोवार को चुना था। इस तरह की बातों से अपनी ही संस्था के भीतर चुनी गई कमेटी के प्रति उनका अविश्वास झलकता है। यही नहीं, रमेश पोवार जिनके चयन पर कमेटी ने मोहर लगा दी है, उन पर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि गांगुली अब खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 2021 का साल क्रिकेट के नजरिए से अब तक भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन महिला क्रिकेटर्स के लिए ये खुशियों की सौगात वाला साल रहा है। महिलाओं को डे नाइट टेस्ट खेलने का पहली बार मौका मिलेगा, 7 साल बाद उनके खाते में पहला टेस्ट आएगा और 14 साल में पहली बार होगा जब एक ही साल में भारतीय महिला टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। उस पर सोने पर सुहागा ये कि इन महिला प्लेयर्स को अब उस इनामी राशि से हिस्सा मिलने वाला है जिसे भारतीय टीम ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर हासिल किया था। BCCI ने इस सिलसिले में सभी प्लेयर्स को औपचारिकता पूरी करने को कहा है। भारतीय महिलाओं को कम क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है और उनकी कमाई भी कम ही होती है, लेकिन इस साल इनामी राशि के साथ साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलने के अलावा सालाना कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली राशि का भी उन्हें फायदा होगा। यानी कोरोना के दौरान जब ज्यादातर लोगों की आमदनी पर विपरीत असर पड़ रहा है, परिवर्तन के तौर पर ही सही, भारतीय महिलाओं के लिए शायद मुद्रा के मामले में अब तक का ये सबसे बेहतरीन साल रहा है। तो बस आज का सफर यहीं तक। अगले शुक्रवार नए पॉडकास्ट के साथ फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए संजय बनर्जी को और चलते रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।